प्रिय श्रोताओ नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम में यहेजकेल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और महिमा। तो आइए श्रोताओ, इस बाइबल अध्ययन को आरंभ करने से पूर्व सुनते हैं एक मधुर गीत।
धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन होगा धन्य जीवन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबको बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से यहेजकेल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर अपने उन लोगों को जिसे उसने चुना था उससे भटक गए और उन कार्यों को करने लगे जिससे परमेश्वर अप्रसन्न होता है। वे प्रतिमाओं की पूजा करने लगे, उपासना करने लगे और यहाँ तक कि उन्होंने परमेश्वर के मंदिर में ये सब करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार से हमने देखा कि परमेश्वर की महिमा, जो शकीना महिमा है, मंदिर से उठ गई। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इससे आगे की बातों को सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे हर एक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जब हम आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं, निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप उनकी रक्षा करें। इस घड़ी जो भाई बहन बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, चिंताओं में हैं या किसी प्रकार की तकलीफ में हैं, आप उनकी सुधि ले, उन्हें अपनी शांति दे, वचन के द्वारा बोले और बातचीत करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ यहेजकेल नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 9 पद को निकाल लीजिए। यहेजकेल 9 अध्याय उसके 9 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, तब उसने मुझसे कहा, इसराइल और यहूदा के घरानों का अधर्म अत्यंत ही अधिक है, यहाँ तक कि देश हत्या से और नगर अन्याय से भर गया है, क्योंकि वे कहते हैं यहोवा ने पृथ्वी को त्याग दिया और यहोवा कुछ नहीं देखता। उनके विचार में परमेश्वर अंधा था और वह पृथ्वी तक अपनी पहुंच नहीं रखता था। यह वैसा ही है जैसा आज मनुष्य कहता है कि परमेश्वर जीवित नहीं है। मेरे प्रियो, यह कहना आसान है कि परमेश्वर दूर स्वर्ग में है और वह नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है, परंतु इस पर गहराई से विचार करने पर यह मूर्खता की बात प्रतीत होती है। मेरे मित्रों, आपने परमेश्वर को नहीं देखा है और न ही उसकी उपस्थिति का प्रमाण पाया, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर नहीं है। मैं जापान कभी नहीं गया और न टोक्यो शहर देखा है, तो क्या मैं यह निष्कर्ष निकाल लूं कि टोक्यो शहर नहीं है? और मान भी लूं कि टोक्यो नाम का शहर नहीं है, तो क्या वह नहीं है? यह सच बदल नहीं सकता है कि टोक्यो शहर है। अब यदि मनुष्य का परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर नहीं है। इसराइलवासी कह रहे थे कि परमेश्वर पृथ्वी को त्याग चुका है। वे ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को स्वयं ही त्याग दिया था। वे उसकी बातों को नहीं सुनना चाहते थे। आइए हम आगे पढ़ें, यहेजकेल 9 अध्याय के 10 पद में, इसलिए उन पर दया ना होगी, ना मैं कोमलता करूंगा, वरन उनकी चाल उन्हीं के सिर लौटा दूंगा। राजा नबूकदनेस्सर के हाथों यरूशलेम का विनाश और मंदिर का जलाया जाना एक भयानक घटना थी। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? परमेश्वर ने कहा, उनकी चाल उन्हीं के सिर लौटा दूंगा। मेरे प्रियो, संपूर्ण व्यवस्था परमेश्वर की है, और यदि आप उसके साथ सामंजस्य में नहीं है, तो उसके साथ मेल करना उचित ही है। यदि मैं सड़क पर शेर आता देखूं, तो मैं सीधा उसके सामने नहीं जाऊंगा। मैं तो विपरीत दिशा में जितना तेज हो सके भागूंगा। आप चाहें तो परमेश्वर को चुनौती दें, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर का रथ विजय के साथ चला आता है, और यदि आप उसके मार्ग में आते हैं, तो परमेश्वर ही आप पर दया करे। यहेजकेल 9 अध्याय उसके 11 पद में लिखा हुआ है, तब मैंने क्या देखा कि जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए और कमर में दवात बांधे था, उसने यह कहकर समाचार दिया, जैसे तूने आज्ञा दी मैंने वैसा ही किया है। ध्यान दीजिए, वहां दो प्रकार के मनुष्य थे। एक वे जो परमेश्वर के दंड के लिए नियुक्त थे, और दूसरे वे जो बचाए जाएंगे। यदि मनुष्य परमेश्वर की ओर फिरे, तो हमारा परमेश्वर दयावान है। यह तथ्य उसके दंड को और अधिक भयावह बना देता है। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 9 समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 10 से जारी रखेंगे। हमने देखा था कि परमेश्वर की महिमा पवित्र स्थान से उठकर भवन की डेवड़ी पर आ गई, और परमेश्वर ने कुकर्मों के कारण सांसें भरने और दुख उठाने वालों पर मुहर लगा दी कि वे विनाश काल में सुरक्षित रहें। शकीना महिमा पवित्र स्थान में है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 10 में हम महिमा के प्रस्थान का यहेजकेल का दर्शन ही पढ़ रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा उसे यरूशलेम लाया कि वह वहां का हाल देखकर बेबीलोन में बंदी इसराइलियों को सुनाए, क्योंकि झूठे भविष्यद्वक्ता उन्हें भ्रम में रखे हुए थे कि यरूशलेम में सब कुछ ठीक है, और वे शीघ्र ही मुक्ति पाकर अर्थात छुटकारा पाकर स्वदेश लौटेंगे। यहेजकेल लौटकर बंदी इसराइलियों को बताएगा कि परमेश्वर यरूशलेम को क्यों नष्ट करेगा और यहूदा वासियों को दंड देगा। मेरे प्रियो, अध्याय 8 में हमने देखा था कि यरूशलेम वासियों के जीवन में पाप का पर्याप्त प्रमाण था। परमेश्वर ने यहेजकेल को स्पष्ट ये सारी बातें दिखाई। हमें परमेश्वर के दंड की सच्चाई को देखना है। जी हाँ, यह जीवित परमेश्वर का एक प्रमाण है। हम पाप करके बच नहीं सकते, और यही परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है। पहियों के भीतर पहिए परमेश्वर की ऊर्जा का द्योतक है, जब वह मनुष्यों के जीवन में हस्तक्षेप करता है। परमेश्वर की महिमा करूबों पर विराजमान थी, और उनके मध्य मंदिर का परम पवित्र स्थान था। इसराइल के पास वह था जो अन्य किसी राष्ट्र के पास में नहीं था। निसंदेह कलीसिया के पास भी वह नहीं है, परमेश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति। रोमियों को लिखे पत्र के अध्याय 9 में पौलुस इसराइल राष्ट्र की पहचान के 8 चिन्ह को व्यक्त करता है जो केवल इसराइल के थे। उनमें से एक थी महिमा। उनके मध्य परमेश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति शकीनाह महिमा थी, जिसे यहेजकेल ने पहले अध्याय में व्यक्त दर्शन में देखा था। पिछले अध्ययन में महिमा प्रस्थान की तैयारी में थी और यहां भी वह प्रस्थान कर रही है। वह मंदिर से निकलकर उस पर मंडराने लगी। अब हम आगे देखते हैं यहेजकेल 10 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल है उसमें नीलमणि का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता है। तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, घूमने वाले पहियों के बीच करूबों के नीचे जा और अपनी दोनों मुट्ठियों को करूबों के बीच के अंगारों से भरकर नगर पर बिखेर दे। अतः वह मेरे देखते देखते उनके बीच में गया। मेरे प्रियो, सन का वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को वहां से अंगार उठाकर नगर पर बिखेरना था। बलिदान का लहू वेदी पर से लेकर दया आसन पर डालना होता था। ये अंगार दंड का प्रतीक थे। उन्होंने परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया और उद्धार को तुच्छ समझा था, अतः अब वे दंड पाएंगे। आज हम में से कई लोग भी ऐसा ही करते हैं और अपने ऊपर दंड के आने की तैयारी करते हैं। मेरे प्रियो, यह अति सरल है। परमेश्वर ने अपना पुत्र प्रभु यीशु को हमारे मध्य में भेजा क्योंकि वह आपसे और मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि वह पवित्र है। इसलिए उसने आपके और मेरे पाप के लिए दंड चुकाया। उसे दंड चुकाना पड़ा, उसे क्रूस पर मरना पड़ा था। प्रभु यीशु प्रायश्चित है। वह हमारे पापों के लिए दया का आसन है। हमारे ही नहीं, संपूर्ण संसार के पापों के लिए, सारे मानव जाति के लिए। यह वह दया का आसन है जहां आप आज भी आ सकते हैं। परंतु यदि आप उसे अस्वीकार करते हैं तो परमेश्वर का दंड निश्चय ही आप पर पड़ेगा। प्रभु यीशु ने आपके दंड को अपने ऊपर में ले लिया है। यही एक मार्ग है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको क्षमा करता है। इसलिए नहीं कि आप एक अच्छे बच्चे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं या एक अच्छी बेटी या बेटे हैं। आप कोई भी क्यों ना हो, आप पापी हैं और परमेश्वर से विद्रोह करते हैं। आज मसीही जन कहे तो यह कहे, हम उद्धार प्राप्त पापी हैं, हम उत्तम जन नहीं हैं। जी हां, यरूशलेम जो पृथ्वी का केंद्र है अब दंड पाएगा। वह पृथ्वी की नाभि है। परमेश्वर उसे यही कहता है। वह प्रभु के सहस्त्र वर्षीय राज्य का केंद्र होगा। आज वह पृथ्वी का सबसे अधिक संवेदनशील स्थान है। किसी ने कहा है, फिलिस्तीन अब्राहम के युग में पृथ्वी का तंत्रिका केंद्र था और आगे चलकर मूसा और भविष्यद्वक्ताओं के कारण सत्य का केंद्र बना और अंत में प्रभु यीशु के आगमन पर उद्धार का केंद्र बना। उसके परित्याग के कारण वह आंधी का केंद्र बना जो वह सदियों तक रहा। मेरे मित्रों, धर्मशास्त्र की भविष्यवाणी है कि वह मसीह के राज्य में शांति का केंद्र होगा और नए जगत में वह महिमा का केंद्र होगा। हम यहेजकेल के दर्शन में उस नगर से परमेश्वर की महिमा का प्रस्थान को देख रहे हैं। यहेजकेल की पुस्तक 10 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से उठकर भवन की डेवड़ी पर आ गया और बादल भवन में भर गया और वह आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर गया। शकीना महिमा परम पवित्र स्थान में वास करती थी जो इन लोगों के लिए परमेश्वर के निकट आने का स्थान था। अब महिमा अपना स्थान त्याग कर मंदिर के ऊपर आ जाती है। कि उनके मन फिराव की प्रतीक्षा करें। यहेजकेल 10 अध्याय उसके 5-8 पद में हम पढ़ते हैं, करूबों के पंखों का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई देता था, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था। जब उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को घूमने वाले पहियों के भीतर करूबों के बीच में से आग लेने की आज्ञा दी, तब वह उनके बीच में जाकर एक पहिए के पास खड़ा हुआ। तब करूबों के बीच से एक करूब ने अपना हाथ बढ़ाकर उस आग में से जो करूबों के बीच में थी कुछ उठाकर सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष की मुट्ठी में दे दी और वह उसे लेकर बाहर चला गया। करूबों के पंखों के नीचे तो मनुष्य का हाथ सा कुछ दिखाई देता था। यहाँ फिर से हाथ शब्द आया है जो परमेश्वर की गतिविधि को प्रकट करता है। भजन संहिता 19 उसके 1 पद में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। जगत परमेश्वर की हस्तकला को प्रकट करता है, परंतु मनुष्य के उद्धार का काम जो परमेश्वर ने किया वह सृजन कार्य से महान है। अध्याय 53 उसके पद 1 में यशाया कहता है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। परमेश्वर के कामों को समझने के लिए मुझे वही भाषा काम में लेना है जिसे मैं जानता हूं। मैं कुछ भी करने के लिए अपनी उंगलियों और अपने हाथ को काम में लेता हूँ और अधिक कठिन काम के लिए भुजाओं का भी उपयोग करता हूँ। परमेश्वर ने जो सबसे बड़ा काम किया वह प्रभु यीशु के क्रूस पर प्रेम का मुक्ति कार्य है। यह उसका भुजबल था, परंतु जगत की रचना के समय उसने केवल उंगलियों को काम में लिया। और यहाँ पर यहेजकेल कहता है कि परमेश्वर का हाथ दंड ला रहा है। मेरे मित्रों, हम आगे पढ़ते हैं यहेजकेल की पुस्तक 10 अध्याय उसके 9 पद में, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब मैंने देखा कि करूबों के पास 4 पहिए हैं, अर्थात एक एक करूब के पास एक एक पहिया, और पहियों का रूप फिरोजा का सा है। क्या आपने पहिया घूमते हुए देखा है? उसमें अनमोल पत्थर की सी चमक होती है। ये पहिए अबाधित कार्य करते हैं और परमेश्वर के व्यस्त होने के सत्य को प्रकट करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 17 पद में परमेश्वर कहता है कि उसका पिता काम करता है और वह भी काम करता है। प्रभु यीशु जब से स्वर्ग गया है वह हमारे लिए काम करने में व्यस्त है। हम यहेजकेल की पुस्तक 10 अध्याय उसके 10 और 11 पद में पढ़ते हैं, उनका ऐसा रूप है कि चारों एक से दिखाई देते हैं, जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। चलने के समय वे अपनी चारों आलंगों के बल से चलते हैं और चलते समय मुड़ते नहीं, वरन जिधर उनका सिर रहता है वे उधर ही उसके पीछे चलते हैं और चलते समय वे मुड़ते नहीं। परमेश्वर कभी लौटकर नहीं आता कि वह कुछ भूल गया है। उसे एक ओर से दूसरी ओर होने की भी आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, वह चक्र मार्ग भी नहीं लेता है। वह संसार में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सीधा चलता है। यहेजकेल के पुस्तक 10 अध्याय उसके 12-14 पद में हम पढ़ते हैं, पीठ हाथ और पंखों समेत करूबों का सारा शरीर और जो पहिए उनके हैं वे भी सब के सब चारों ओर आंखों से भरे हुए हैं। मेरे सुनते हुए इन पहियों को चक्कर कहा गया है, अर्थात घूमने वाले पहिए। एक एक के चार चार मुख थे, एक मुख तो करूब का सा, दूसरा मनुष्य का सा, तीसरा सिंह का सा और चौथा उका पक्षी का सा था। यह बहुत ही उच्च कोटि की प्रतीकात्मक भाषा है। मैं इस पर बल देना नहीं चाहता हूं, परंतु यहां हमारे सामने चारों सुसमाचारों का संदेश है। उकाब प्रभु यीशु का ईश्वरत्व है। जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पाते हैं। शेर प्रभु यीशु का राजा होना, यहूदा के गोत्र का शेर, मत्ती रचित सुसमाचार, मनुष्य का चेहरा प्रभु यीशु का मनुष्यत्व से लूका रचित सुसमाचार, अंत में करूब या बैल प्रभु यीशु का दासत्व, मार्कुस रचित सुसमाचार, उसने अपना लहू बहाया कि हमें अनंत जीवन प्राप्त हो, उसने दया आसन स्थापित किया। जी हाँ, मंदिर में करूब बलि के लहू की ओर निहारते थे। हम यहेजकेल 10 उसके 15 पद में पढ़ते हैं, करूब भूमि पर से उठ गए, ये वे ही जीवधारी हैं जो मैंने कबार नदी के पास देखे थे। मेरे प्रियो, यहेजकेल अध्याय 1 के अपने पहले दर्शन का संदर्भ यहाँ पर दे रहा है। हम आगे देखते हैं, महिमा मंदिर से प्रस्थान करती है। यहेजकेल की पुस्तक 10 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, यहोवा का तेज भवन की डेवड़ी पर से उठकर करीबों के ऊपर ठहर गया। मंदिर से परमेश्वर की महिमा उठती है। यहेजकेल 10 उसके 19 में लिखा हुआ है, तब करूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल गए, और पहिए भी उनके संग संग गए, और वे सब यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक में खड़े हो गए, और इसराइल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर ठहरा रहा। करूब उड़ गए और महिमा उठकर पूर्वी फाटक पर जाकर रुक गई। आगे हम पढ़ते हैं यहेजकेल 10 उसके 20 से 22 पद में, ये वे ही जीवधारी हैं जो मैंने कबार नदी के पास इसराइल के परमेश्वर के नीचे देखे थे, और मैंने जान लिया कि वे भी करूब हैं, हर एक के चार मुख और चार पंख, और पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ भी थे। उनके मुखों का रूप वही है जो मैंने कबार नदी के तट पर देखा था, उनके मुख ही क्या वरन उनकी सारी देह भी वैसे ही थी, वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। मेरे विचार में यह दर्शन एक तथ्य का चित्रण है, परमेश्वर देह धारण करेगा, या जैसे यूहन्ना कहता है, वचन देहधारी हुआ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 14 पद में। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 10 समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 11 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है यरूशलेम के शासकों के विरुद्ध भविष्यवाणी। अध्याय 11 में उन शासकों के लिए भविष्यवाणी है जो अब तक यरूशलेम में थे, जबकि अधिकांश प्रजा बंधुआई में बेबीलोन को जा चुकी थी। यरूशलेम का अभी विनाश नहीं हुआ था, सिदकिया राजा अभी राजगद्दी पर बैठा था, वे परमेश्वर से ही नहीं बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर से भी विद्रोह कर रहे थे। तो आइए हम पढ़ेंगे यहेजकेल के पुस्तक 11 अध्याय उसका 1 पद, लिखा हुआ है, तब आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास, जिसका मुंह पूर्वी दिशा की ओर है, पहुंचा दिया, और वहां मैंने क्या देखा कि फाटक ही में 25 पुरुष हैं। मैंने उनके बीच अज्जूर के पुत्र याजन्याह को और बनायाह के पुत्र पलत्याह को देखा, जो प्रजा के प्रधान थे। वहां के राजकुमारों के ये नाम दिए गए हैं। यहेजकेल की पुस्तक 11 अध्याय के 2 और 3 पद में आगे लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो मनुष्य इस नगर में अनर्थ कल्पना और बुरी युक्ति करते हैं वे ये ही हैं। ये कहते हैं, घर बनाने का समय निकट नहीं, यह नगर हंडा और हम उसमें का मांस हैं। दूसरे शब्दों में वे कहते थे कि यह नगर हमारा चाय का कप है, हम इसे पी लें, जाने वाले चले जाएं, और कुछ लोग चले भी गए, परंतु हम हैं, अतः हमें शांति मिलेगी और हम समृद्ध होंगे। उनका भौतिकवाद परम भ्रष्ट था। यहेजकेल की पुस्तक 11 अध्याय उसके 4 और 5 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए हे मनुष्य के संतान, इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी, तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कह, यहोवा यूं कहता है, हे इसराइल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूं। परमेश्वर हमारे विचार दूर ही से जानता है। यहेजकेल 11 उसके 6 में लिखा है, तुमने तो इस नगर में बहुतों को मार डाला, वरन उसकी सड़कों को शवों से भर दिया है। मेरे प्रियो, स्पष्ट है कि उन शासकों ने परमेश्वर के भक्तों को जान से मार डाला था। यहेजकेल 11 के 10 में हम पढ़ते हैं, तुम तलवार से मर कर गिरोगे और मैं तुम्हारा मुकदमा इसराइल के देश की सीमा पर चुकाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। दंड देने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य था कि वे जाने कि वही यहोवा है और यहोवा ही परमेश्वर है। यहेजकेल 11 अध्याय के 11 पद में लिखा है, यह नगर तुम्हारे लिए हंडा न बनेगा और न तुम इसमें का मांस होगे, मैं तुम्हारा मुकदमा इसराइल के देश की सीमा पर चुकाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि वह उन्हें दंड देगा। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें अवश्य ही दंड देगा, क्योंकि वे परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे हैं और उन कार्यों को कर रहे हैं जिसे परमेश्वर नहीं चाहता कि वे लोग करें। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन के लिए और मेरे जीवन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम अपने मनों को फिराकर परमेश्वर के कार्यों को करें, उसकी ओर फिरें। आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि आज इस वचन के प्रकाशन के द्वारा आप अपने जीवन को अवश्य चलाएंगे। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे एवं सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
दुनिया ये नहीं अपनी, सब कुछ बेगाना है, कुछ रोज यहाँ रहना फिर छोड़ के जाना है, फिर छोड़ के जाना है, रहबर वो हमारा है, पहचान पुरानी है, वो क्रूस निशाना है।